जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jai Gaura Haribol, 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 Jai Gaura Haribol. Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajaka Acharya Ashtottara Shata Shri Srimad His Divine Grace Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Parivrajakacharya Ashtottara Shata Shri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki Granthara Srimad Bhagavatam ki Samaveta Bhakta Vrinda ki Nitai Gaur Premanande. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. अहम् भवः दक्ष भृगु प्रधानः प्रजा ईश भूत ईश सूर ईश मुख्यः सर्वे वयम् यत्नियमम् प्रपन्नः मूर्ध्न्या अर्पितम् लोकहितम् वहाम् अहम् भवो दक्ष भृगु प्रधानाम् अहम् भवो दक्ष भृगु प्रधानः प्रजेश भूतेश सुरस्य मुख्यः प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्यः सर्वे वयम् यन्नियमम् प्रपन्ना सर्वे वयम् यन्नियमम् प्रपन्ना मूर्ध्न्यार्पितम् लोकहितम् वमः वहामः मूर्ध्न्यार्पितम् लोकहितम् वहामः अहम् भवो दक्ष भृगु प्रधानः प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्यः सर्वे वयम् यन्नियमम् प्रपन्ना मूर्ध्न्यार्पितलोकहितम् वामः
Matajis.
भवः शिवजी दक्ष प्रजापति दक्षः भृगु भृगु मुनि प्रधानः तथा अन्य प्रजा ईश प्रजाओं के नियंत्रक भूत ईश जीवों के नियंता सूर ईश देवताओं के नियंता मुख्यः आदि सर्वे सभी वयम् हम भी यत् नियमम् जिसके नियम प्रपन्नः शरणागत मूर्ध्न्या अर्पितम् हम अपने अपने सिर झुकाकर लोकहितम् जीवों के कल्याण हेतु वहामः जीवों के ऊपर शासन करते हुए आदेशों का पालन करते हैं। दोनों श्लोक साथ में है 53-54 श्लोक इस प्रकार से है। श्री ब्रह्मोवाच स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध सदने भ्रूभंग मात्रेण हि संदिदक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। ये 53 है। अहम् भवो दक्ष भृगु प्रधानः प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्यः सर्वे वयम् यन्नियम् प्रपन्ना मूर्ध्न्यार्पितम् लोकमितम् वहामः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी ने कहा द्विप्रारब्ध के अंत में जब भगवान की लीलाएं समाप्त हो जाती है तो भगवान विष्णु अपनी एक भ्रुकुटी विलास से सारे ब्रह्मांड का, जिसमें हमारे निवास स्थान भी सम्मिलित है, विनाश कर देते हैं। मैं तथा शिवजी जैसे पुरुष तथा दक्ष, भृगु आदि प्रधान ऋषि मुनि एवं जीवों के शासक, मानव समाज के शासक एवं देवताओं के शासक, हम सभी उन भगवान विष्णु को अपने सिर झुकाकर समस्त जीवों के कल्याण के लिए, उनके आदेशों का पालन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, मृत्युः सर्वहरश्चाहम्। जब भगवान मृत्यु या काल के परम नियामक के रूप में निकट आते हैं तो वे सर्वस्व छीन लेते हैं। दूसरे शब्दों में, सारा ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा तथा हमारा सर्वस्व भगवान द्वारा किसी प्रयोजन के लिए प्रदत्त है। यह तो शरणागत जीव का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर के आदेशों का पालन करे, कोई भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मा ने भगवान द्वारा शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा करने के लिए उन्हें शरण देने से मना कर दिया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज के इस अध्याय का शीर्षक है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो हम कथा आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर अम्बरीश महाराज को दंड देना चाहते हैं और उसके कारण अपने योग शक्ति के बल के द्वारा अपने एक केश बाल को उखाड़कर जमीन पर पटकते हैं। उसमें से जो भयंकर राक्षस निकलता है वो मानो अभी चारों दिशाओं को खा जाएगा। और जैसे वो अम्बरीश महाराज के सामने आता है, अम्बरीश महाराज वे क्या सोच रहे हैं, है तो शक्तिशाली राजा, पृथ्वी के सम्राट, लेकिन उसके बावजूद उससे बढ़कर उनकी एक और, उनका एक अलग स्वरूप है, वो है भगवान के अनन्य दास। और उसके कारण वो ये सोचते हैं कि अगर मैं भगवान का अनन्य दास हूं, भगवान मेरे हृदय में स्थित है, तो वो जानते हैं मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अगर ये राक्षस मुझे खाना चाहते तो शायद वही इच्छा है उनके, इसलिए केवल प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। हाय हाय, बचाओ बचाओ, कुछ नहीं, केवल प्रणाम। और जैसे पूरे पुराने श्लोकों, पहले श्लोकों में वर्णन आया है, भगवान का सुदर्शन चक्र पूर्व आज्ञा के अनुसार, उसको आज्ञा दिखे रखी है कि जब भी भक्त संकट में आएंगे तो क्या करना है आपको, आप जानते हो क्या करना है। तो सुदर्शन चक्र उसने उस राक्षस को तो भस्म किया ही, लेकिन दुर्वासा मुनि के पीछे लगने लगा, राक्षस के पिता दुर्वासा मुनि। और जब दुर्वास मुनि छुपने लगे पहाड़ियों में, गुफाओं में, नदी में, समंदर में, कहीं पर उनको पीछा नहीं छूटा। तब अब जाकर वो सोच रहे हैं चलो ब्रह्मा जी कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी पर पास आ गए और पहले श्लोक में दुर्वास मुनि भयभीत मन से इधर उधर शरण खोजते रहे, किंतु जब उन्हें कोई शरण न मिली अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, कृपा करके भगवान के द्वारा भेजे गए इस ज्वलित सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। और तब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी भी अम्बरीश महाराज जैसे भक्त है, महान भक्त है, तो उन्होंने ये सोचा नहीं, देखो आज उसको पता चला मैं कौन हूं, देखो मेरे पास आया है, आज मैं उसको शरण दे दूंगा, नहीं, वो उसको ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? वे कह रहे हैं कि भगवान शिव जी, मैं, दक्ष प्रजापति, भृगु, सारे जो सप्तर्षि, दिक्पाल, लोकपाल, ये सब लोग केवल भगवान के आदेशानुसार कार्य करते हैं। जब जब भगवान कुछ करना चाहते हैं तो हम केवल सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद यहां पर तात्पर्य में कह रहे हैं कि किस प्रकार से दुर्वास मुनि को देखना चाहिए था इस बात को, ये ब्रह्मा जी उससे कह रहे हैं कि दुर्वास मुनि की जो शक्ति है तपस्या की वो कहां से आई है? भगवान ने शक्ति दी है। रावण, हिरण्यकश्यप, सारे राक्षस, इनको अलग अलग देवताओं ने अलग अलग प्रकार के वरदान दिए। सारे वरदान आए कहां से? ये वरदान देने की ताकत ब्रह्मा जी को, शिव जी को किसने दी है? भगवान श्री विष्णु ने। तो इस बात को भूलकर अगर कोई सोचता है कि अभी मेरी ताकत इतनी बड़ी हो गई कि मैं अभी जो चाहता हूं कर सकता हूं, तो अपनी तपस्या का बल का यह दुरुपयोग ब्रह्मा जी उनको सुना रहे हैं कि हम सब लोग, मैं, ब्रह्मा, शिव, हमने आपको वरदान दिए हैं, हमने आपको यह तपस्या का फल दिया है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? जब भगवान कुछ कार्य करना चाहते तो हम केवल सिर झुकाकर खड़े होते। आपको भी यही करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया है? अपने बल का प्रयोग करके अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया है। श्रील प्रभुपाद इस बात को एक बहुत सुंदर कहानी से, नीति शास्त्र की कहानी से बताते हैं कि एक जीवात्मा को कभी भूलना चाहिए, नहीं चाहिए कि भगवान का डेफिनेशन, व्याख्या ही ऐसी है। भगवान वही व्यक्ति है जो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो कोई एक चीज के कारण नहीं है। संसार में कोई भी चीज बनती होगी उसका कुछ ना कुछ पीछे कारण होता है। आप कहां तक भी जाओ, ओके, वो कारण लिखा, फिर उस कारण का कारण पूछो, वो है भगवान, सर्व कारण कारणम। तो इस बात को जीवात्मा जब भूल जाता है तो भगवान उसको एक झलक दे देते हैं अपनी एक शक्ति की। तो प्रभुपाद ये कहानी बताते हैं कि एक चूहा घर में दौड़ रहा है, यहां वहां भाग रहा है, और हर दिन उसके पीछे एक बिल्ली भागती है। वो बहुत परेशान होता है, अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां घूमते रहता है। आखिर में चूहा को मूषक कहा जाता है संस्कृत में। तो मूषक किसी महात्मा के पास जाता है, ऋषि के पास, कहता है देखो क्या मेरी जिंदगी का हालत है, कितना परेशान हूं मैं, दिन रात मैं भय में जीता हूं, अभी ऐसे भय में जीने की मुझे बिल्कुल लालसा नहीं, आप कुछ करो। मैं क्या करूं? आप एक काम करो, अगर आप प्रसन्न है मुझ पर तो मुझे बिल्ली बना दो ताकि मेरा बिल्ली का डर चला जाएगा। तो साधु महाराज ने कहा तथास्तु, तुरंत वो बिल्ली बन गया, म्याऊ घूमने लगा यहां वहां, फिर चूहों को देखने लगा, चूहों के पीछे भागने लगा, कि क्या जिंदगी है वाह। फिर एक दिन अचानक घर से बाहर निकला तो गले के कुत्ते यूं पीछे लगे उसके कि बोला अरे ये तो भयंकर गड़बड़ हो गया, मैं सोच रहा था कि मैं खुश हूं। देखिए संसार में ऐसे होता है, हम लोग क्या करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके सोचते हैं अभी जिंदगी एकदम नाउ आई एम सेटल्ड, हाँ वी वॉन्ट टू सेटल लाइफ, और उसके कारण हम लोग कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाते हैं, फिर पता चल रहा है इससे भी बहुत बढ़कर कुछ है। हाँ फिर एक और चपराक आती है माया देवी से, प्रकृति से, धड़ाम, फिर अरे गड़बड़ हो गया, मैं सोच रहा आई एम सेटल्ड। तो मुशकराज अभी जो बिल्ली बना हुआ है वो सोच रहा है ये तो बहुत भयंकर चीज हो गई, सारे कुत्ते मेरे पीछे भौं भौं करके भागते रहते हैं। वो फिर से साधु के पास गया, बोले क्या जिंदगी है मेरी, बहुत खराब जिंदगी है, मैं कुछ करो, आप में शक्ति है, मैं आपके शरण आया हूं। बोले क्या चाहते हो, मुझे कुत्ता बना दो। तथास्तु, तुरंत कुत्ता बन गया, भौं 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 यहां वहां भागने लगा, बिल्लियों को परेशान करने लगा, खुश हो गया, देखो मेरी ताकत। और फिर एक दिन रात को घूमते घूमते यहां वहां जाने लगा, अचानक बाजू के जंगल में से एक शेर आ गया, और शेर पीछे पड़ा तो ऐसा भागा कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि उसको शेर की ताकत मालूम थी। फिर सोचने लगे जिंदगी बहुत खराब है, वेरी सैड, आई एम सफरिंग। सब लोग सोचते ना, हम लोग ऐसे सेटल होते हैं फिर सफरिंग आता है, फिर और सेटल होते हैं फिर सफरिंग, ये चक्र चलते रहता है। आप एक दुख का निवारण करो, एक समस्या का निवारण करो, दूसरी बड़ी समस्या उसके पीछे ही खड़ी है। ये भौतिक जीवन है, इसी को संसार कहते हैं। हाँ इसको संसार क्या है, समस्या के बाद समस्या, समस्या के बाद समस्या, बीच में थोड़ा सा गैप आता है तो हम लोग मैं सुखी हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, आई एम सेटल्ड, आई एम परफेक्टली हैप्पी, फिर बड़ी समस्या आती है, फिर हम लोग भागते हैं। फिर से शेर के पास, साधु के पास गया, महाराज क्या कहूं, मैं थोड़ा सा खुश था कुत्ता बनकर, लेकिन अभी ये शेर आ गया, कुछ करो। तो साधु महाराज ने कहा क्या चाहते हो, मुझे एक शेर बना दो। तथास्तु, तुरंत शेर बना, दहाड़े मारने लगा, और अचानक उसने देखा है साधु, दुबला पतला सा साधु, मुझे तो जोर से भूख लगी है। तो साधु देखने में, अरे ये क्या, ऐसे इसके आंखों में अलग चमक कैसे आ गई, हाँ ये क्या देख रहा है मेरी तरफ। तो उसने मुझे क्या सोच रहे हो आप, नहीं मैं तो शेर हूं ना, अभी अभी मुझे भूख लगी है, जो मेरे सामने आता है उसको मैं खा जाता हूं। साधु ने, उसने सोचा मैं अभी साधु को खा जाऊंगा। साधु ने क्या किया, पानी लिया, छिड़का, पुनर्मोषक भाव, तुरंत छोटा सा चूहा भागने लगा। ये भगवान की शक्ति है। अगर कोई भी जीवात्मा ऐसे सोचता है कि मैं कुछ बड़ा बन गया, मैं बड़ा बन जाऊंगा तपस्या के बल से, पैसों के बल से, शारीरिक ताकत से, बुद्धि से, किसी भी चीज से, वो अगर सोचता है कि मैं कुछ बड़ा बन गया, तो भगवान की प्रकृति, भगवान को भी आने की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं, पुनर्मोष्टिक भाव, आप पुनः वैसे चूहे बन जाओ। ये असल में हमारा संसार है, इसी प्रकार से हम ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी यहां पर कह रहे हैं कि देखो भाई दुर्वासा, हम आपको शरण नहीं दे सकते, क्योंकि अभी आपने किसी साधारण व्यक्ति को तकलीफ नहीं दी है, एक भक्त को दी है, महान भक्त को तकलीफ दी है। अर्थात हमें किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, लेकिन खास करके भक्तों के बारे में कभी भी ऐसे सोचना भी नहीं कि इसको मैं कुछ तकलीफ दे सकता हूं। वहां पीछे वो चक्र घूमते रहता है, हा? उसको पहले से आज्ञा देके रखी है आपको क्या करना है, उसको बराबर मालूम है। सो कभी भी जिंदगी में कभी सोचने का नहीं कि मैं भक्तों को कोई तकलीफ दे सकता हूं। तो ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहने से हमें कुछ शिक्षाएं मिल रही है। भगवान सर्व कारण कारणम होने के कारण ये हमारे अहंकार का भी कारण है। सब कुछ जो जो संसार में घटता है, जो जो हम लोग सोचते हैं, जो हमें शक्ति प्रदान हुई है, सबके कारण है। प्रभुपाद यहां पर साफ कह रहे हैं कि जो आपको शक्ति मिली है, बुद्धि मिली है, शरीर मिला है, उसका एक ही प्रयोजन है। क्या है? उसे फिर से पुनः भगवान की सेवा में लगाओ। आपके पास एक थोड़े समय के लिए दी गई चीज है, हमारा यह शरीर, हमारा परिवार, हमारा मन, बुद्धि, सब कुछ। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, मानस देह गेह जो मानस देह गेह जो कुछ मोर, जो मैं सोच रहा हूं ये मेरा है, मन देह और घर, अर्पिलिन तुया पदे नंद किशोर, मैं अभी आपको अर्पण करना चाहता हूं क्योंकि वो आपका ही है। हमारा दान धर्म, हमारी तपस्या, ये भी भगवान कहते यही सब कुछ मेरे लिए करो। यत करोसि यदस्नासि यत जोहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु समर्पणम्। सब कुछ मुझे अर्पण करो। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं का है। वो अर्पण करने से आप एक योग्य सही स्थिति में आ जाते हो। जब तक हम सोच रहे हैं मेरा है, भक्ति का जो जीवन है ये कोई ऐसे नहीं कि थोड़े समय के लिए मैं भक्ति करूंगा दिन के 4 घंटे और बाकी 20 घंटे मैं अपने लिए प्राइवेट लाइफ, ऐसी भक्ति नहीं होती। भक्ति ये जीवन शैली है, हमारा संपूर्ण जीवन समर्पित करना ये भक्ति है। भक्ति पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, फुल टाइम बिजनेस। चाहे आप फुल टाइम डिवोटी हो, ब्रह्मचारी बनकर मंदिर में रहते हो, या कोई गृहस्थ बनकर घर पे रहता हो, लेकिन फिर भी इसमें कोई अंतर नहीं है, उनका जीवन समर्पित है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि अगर कोई भक्त है वो भी बाहर से ऐसे ही दिख रहा है कि अपना कार्य दूसरे लोगों के जैसे करता है, ऑफिस में जाता है, परिवार का लालन पालन करता है, बच्चों को शिक्षा देता है, पैसे कमाता है, सब कुछ सेम, लेकिन उसके घर के केंद्र बिंदु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो कहते हैं कि ऐसे अगर कोई घर में घुस रहा है, अगर कोई व्यक्ति जिसके घर में भगवान केंद्र नहीं वो अपने घर में घुस रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसके घर का केंद्र बिंदु भगवान है वो अपने घर में घुस रहा है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये व्यक्ति एक आश्रम में घुस रहा है, इसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। आश्रम का मतलब क्या है? जब हम आश्रम ऐसा शब्द बोलते हैं तो आपके सामने कौन सा चित्र आता है बताइए? क्या चित्र आता है? तुरंत हमें यह याद आता है कि कोई मुनि की कुटिया है, वहां भगवान का यज्ञ इत्यादि सब चल रहा है, ऐसा आता है कि नहीं? आश्रम बोलने से आश्रम का मतलब है वो जगह। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। आश्रम यानी वो जगह जहां पर भगवान केंद्र बिंदु है, वो चाहे 600 स्क्वायर फुट का फ्लैट हो या बड़ा पैलेस हो या मंदिर हो, अगर वो केंद्र बिंदु भगवान नहीं है तो आश्रम नहीं है, और केंद्र बिंदु भगवान है तो आश्रम है। इसीलिए प्रभुपाद यहां पर साफ आदेश दे रहे हैं कि हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि सारा ऐश्वर्य प्रतिष्ठा तथा हमारा सर्वस्व भगवान द्वारा किसी प्रयोजन के लिए हमें दिया गया है। भगवान जब कुछ देते हैं तो उसका कुछ प्रयोजन होता है। अभी कल ही हमने रामनवमी का उत्सव मनाया, तो हम इस अनुषंग से एक कहानी लेते हैं रामायण से। किष्किंधा कांड में एक कहानी आती है कथा कि देखिए भगवान कैसे देते हैं और क्या चाहते हैं। रामायण में असल में एक अयोध्या है, दूसरी किष्किंधा है, तीसरी लंका है। ये तीनों एक अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां हैं। अयोध्या की संस्कृति क्या है? वहां भगवान ही केंद्र बिंदु है, वहां मर्यादा है, वहां सब कुछ सही चल रहा है। किष्किंधा में ज्यादा करके इंद्रिय भोग के प्रति लोग, लेकिन फिर भी इंद्रिय भोग होते हुए भी वो भगवान की सेवा भी कर रहे हैं। जैसे आपने कथा में सुना होगा कि वाली क्या था, एक दृष्टि से उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था कि अपने छोटे भाई को भगाकर उसकी पत्नी को स्वीकार करके वो राजभोग कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपने कथा सुने कि वो गायत्री करता था डेली। इसकी ताकत इतनी थी कि वो चारों दिशाओं में जाकर, समंदर में जाकर गायत्री करता था। और तीसरा संस्कृति है लंका, वहां भगवान का कोई संबोध, कोई लवलेश नहीं है, वो केवल एक ही है, भोगवाद। कैसे भी करके भोग करो, ये लंका की संस्कृति है। तो रामायण में ये तीनों संस्कृतियां दिखती है। असल में ऐसा कहते हैं कि जब ये लंकेश रावण, उसने जब वाली के ऊपर आक्रमण करना चाहा तो वाली ने पीछे से देखा साइड से कोई तो भी आ रहा है, और तभी वो गायत्री कर रहा था, तो जैसे वो झपट पड़ा उसको यूं दबा के रखा और उसने देखा तक नहीं, गायत्री करते रहा, फिर उसको ऐसे उठाकर वो दूसरे समुंदर पर गया, फिर तीसरे, फिर चौथे, और फिर बाद में आया, फिर उसको छोड़ दिया, ठा तो गिर गया। तो रावण समझ गया इसकी क्या ताकत है कि मुझे लेकर उड़ रहा है यहां वहां। तो तुरंत वाली पूछता, अरे भाई आप चाहते क्या? सॉरी है, मैंने आपको देखा नहीं। हाँ, कोई भी संसार में अगर सोचता है कि मैं सबसे बड़ा ताकत वाला व्यक्ति हूं, तो भगवान ने ऐसी योजना बना के रखी है कि आपसे बढ़कर कोई मिल जाएगा आपको। तो वो समझ गया, वाली को बोला, आपकी मैं मित्रता चाहता हूं। अभी ये वैदिक काल है तो मित्रता के लिए भी मैत्री कैसे होती थी? अग्नि के सामने। तुरंत उन्हें अग्नि प्रज्वलित किया, ब्राह्मणों को बुलाया, यस वी आर फ्रेंड्स। अभी देखो मित्रता में भी वो क्या से चाहता है। इनके मित्रता के कुछ नियम थे। वो पहला नियम बनाता है कि जो कुछ मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा ऐश्वर्य, मेरी लंका, ये सब कुछ तुम ले सकते हो, और तुम्हारा जो है मैं ले सकता हूं। देखो इसमें कोई भगवान है कहीं पर? कुछ नहीं। ये मैत्री केवल भोगवाद के लिए है। वाली उसका, उसके ऊपर मोहित होकर वाली ने भी ऐसा कार्य किया, और उसके कारण जब भगवान श्री राम किष्किंधा पहुंचते हैं सीता हरण होने के बाद, यही महीना है चैत्र महीना, सारा जंगल हरा भरा दिख रहा है, बहुत सुंदर समय है, और उस समय वे पंपा सरोवर पहुंचते हैं, और सुग्रीव बहुत भयभीत होने के कारण हनुमान को भेजते हैं। हनुमान जाके पूछते हैं कि भाई आप कौन हो? मैं सुग्रीव का मंत्री हूं, आप कौन हैं? और राम और लक्ष्मण ये कहते हैं कि हम सुग्रीव को ही मिलना चाहते हैं, हम राम और लक्ष्मण हैं। और फिर जब सुग्रीव से मिलते हैं तो फिर से अग्नि के समक्ष भगवान श्री राम सुग्रीव को, जो कि एक वानर है, वानर का मतलब बिल्कुल एक बंदर नहीं है, वानर थोड़े से वानर, यानी कि उनको क्या ये नर है ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा उनको किम पुरुष भी बताया जाता है, क्या ये पुरुष है, किम पुरुष, खाली उनकी पूछ होती है, लेकिन बोलते व्यक्तियों के जैसा है संस्कृत। तो उनका भी अग्नि के समक्ष मैत्री भाव हुआ, और उसमें जब सुग्रीव ने अपनी सारी कहानी श्री राम को बता दी तो राम ने कहा कि आप मेरे मित्र हो, इसलिए मेरा व्रत है कि आज का सूर्यास्त वाली नहीं देखेगा। आज सूर्यास्त के पहले वाली खत्म हो जाएगा। अभी सुग्रीव बहुत प्रसन्न हो गया और सुग्रीव ने कहा कि अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मेरा ये सारा जो वानर का साम्राज्य है, जितने वानर है, आपको हम सीता माई को ढूंढने के लिए मदद करेंगे। अर्थात सुग्रीव को शंका थी कि राम ऐसे कर पाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप इतने आसानी से कह रहे हो, लेकिन आप जानते हो वाले की ताकत क्या है। और फिर सारा वर्णन करते हैं वो कि कैसे वो दुंदुभि राक्षस को मारने के बाद, जो कि समुद्र में गया, हिमालय पे गया, हर जगह गया चैलेंज करने के लिए, लेकिन सब लोगों ने, भाई हमारे पास इतनी शक्ति नहीं आपसे लड़ने के लिए, आप वाली के पास जाओ। अब जब वाली ने लड़ाई की तो दुंदुभि को मारकर उसका शरीर जो कि भैंसे के रूप में था उसको कई योजन दूर उसने फेंक दिया। ये ताकत है वाली की। क्या आप उसका जो ये अस्थियां हैं उनका ढेर लगा हुआ है, क्या आप उनको हटा सकते हो? और एक बार वाली ने ये सातों जो ताल के वृक्ष हैं इनको एक एक बाण से भेदा था, एक बाण तुरंत अंदर से चला गया। वो ताल के वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, सख्त भी होते हैं, तो इसकी उतनी ताकत है। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है दिखाई कहां पर है। राम जी ने केवल अपने अंगूठे से इतनी दूर भेज दिया कि दिखा तक नहीं वो अस्थियों का ढेर, और फिर एक ही बाण से सारे जो ताल वृक्ष है उनको भेद कर वो बाण फिर से भगवान श्री रामचंद्र के तुनीर में आ गया। तब उसको लगा हाँ बराबर है, शक्ति है। तो उनके आदेश से सुग्रीव ने जाकर किष्किंधा में वाली को ललकारा, वाली बाहर आ गए और राम छुप कर देख रहे हैं कि कभी मारना है, लेकिन दोनों भाई एक जैसे दिख रहे थे उसके कारण वो मार नहीं पाए। और यहां पर वाली ने सुग्रीव को इतना पीटा कि उसने राम कहां है सुग्रीव इतना मार खाया कि वो भाग गया और भागकर राम को कोसने लगा कि देखो आपके कारण मैंने अपना जीवित धोखे में डाला, आपने अगर पहले ही बताया कि आप वाली को नहीं मार सकते तो मैं ये रिस्क नहीं लेता। तभी राम ने कहा कि देखो आप इतने एक दूसरे जैसे दिखते हो, कुछ तो लक्षण रखा दिखाओ जिसे मैं पहचान सकूं ये सुग्रीव है वाली है। ऐसे आचार्य दूसरी दृष्टि से भी कहते हैं कि असल में सुग्रीव केवल राम की मैत्री चाहता था, और लेकिन लक्ष्मण को ज्यादा महत्व नहीं देता था, तो भगवान रामचंद्र दिखाना चाहते थे कि लक्ष्मण कौन है, ऐसे आचार्य कहते हैं उपकथानक। इसीलिए श्री रामचंद्र, जबकि वो भगवान है तो वो तो जान सकेंगे ना कौन वाली है कौन सुग्रीव है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अंदर बैठे हैं, वाली को बराबर जानते हैं। लेकिन जब सुग्रीव वापस आए तभी लक्ष्मण को राम जी कहते हैं कि अभी आप इनके गले में एक हार पहनाइए, पुष्पहार, जिससे मैं पहचान सकूं कि ये सुग्रीव है। मतलब श्री गुरु तत्व संकर्षण श्री लक्ष्मण, इनका एक आशीर्वाद सुग्रीव को प्राप्त हुआ। और फिर हम जानते हैं कि किस प्रकार से वाली का छिपकर भगवान रामचंद्र ने वध किया। वाली ने फिर से कोसना चाहा राम जी को कि आपने ये जो क्षत्रियोचित कार्य नहीं किया है, आपने छुपकर मुझे मारा है, अगर आप मुझसे सामने सामने लड़ते तो यहां मैं नहीं आप होते। वाली भी देखो कितना सोच रहा है वो सोच रहा है उसकी ताकत इतनी है कि वो रामचंद्र को मार सकता है, लेकिन भगवान राम ने ही उसको ताकत दी है। तो राम जी कहते हैं कि देखो पहले तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पुत्री से, अपनी पुत्र वधु से, अपने भाई के पत्नी से संभोग करता है तो उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। और मैं ये सारी जो पृथ्वी है इसके सम्राट महाराज भरत, और मैं भरत के आदेश से यहां पर आया हूं और आपको दंड देना चाहता हूं। और अधिक बात सुनना चाहते हैं तो क्षत्रियों का कार्य है कि जब हम लोग निकलते हैं वन में तो हम लोग ऐसे ही शिकार कर डालते हैं। शिकार करने के लिए हम झाड़ के पीछे लोग छुप जाते हैं, उसमें क्या गलत है। और इस वाक्यों के बाद में वाली को जब ज्ञान हुआ कि भगवान रामचंद्र कौन है, तब उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। फिर सुग्रीव को भी क्षमा कर दी, सुग्रीव को कहा कि अब अंगद को उसका रक्षण करो। और आगे हम जानते हैं कि किस प्रकार से सुग्रीव महाराज बन गए और भगवान रामचंद्र ने उनको कहा कि आप तारा से भी विवाह कर लो, तो तारा, रूमा और अनेक और स्त्रियां इनके साथ ऐसे भोग विलास में लग गए कि चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, चतुर्मास आ गया, वर्षा हो रही है और आस्ते आस्ते समय आ गया, चतुर्मास खत्म हो गया, जमीन सूखने लगी, फिर भी भोग विलास से बाहर नहीं आ पाए। और तभी जब राम ने देखा कि 15 दिन बीत गए अभी तक बाहर नहीं आए, तब भगवान रामचंद्र फिर से यही बात कहते, अरे मैंने इसको राज दिया, मैंने वाली का वध किया और अब ये भूल गया कि सीता को ढूंढने के जाने का है। और लक्ष्मण उसको समझाते कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो आएगा। लेकिन राम इतने क्रुद्ध थे कि लक्ष्मण भी डर गया, और जैसे राम क्रोधित हो गए लक्ष्मण का क्रोध दुगना हो गया। बोला अभी जाता हूं, सुग्रीव को मैं इस प्रकार से पकड़ के लाऊंगा, उसको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। राम तुरंत कहते हैं नहीं 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 ऐसे नहीं, इतने गुस्से से मत जाओ, पहले प्रयास, वो मित्र है मेरा, पहले प्रयास करो, उसको समझाओ, अगर समझता नहीं फिर हम देखेंगे क्या करना। और जैसे लक्ष्मण किष्किंधा में जाता है, अपनी प्रत्यंचा का टंकार करता है, सारी किष्किंधा भयभीत हो जाती है। हनुमान, अंगद, ये लोग सोचते हैं लक्ष्मण को कैसे शांत किया जाए, और सब लोग सुग्रीव को कोसने लगते हैं। सुग्रीव तो इस प्रकार से बेहोश था, मदमस्त था कि प्रत्यंचा के टंकार से भी उसको कुछ थोड़ी देर के लिए जाग गया, फिर सो गया। देखो कैसा, किस प्रकार का है भौतिक संसार का जो मद है वो इस प्रकार से है कि भगवान ने हमें शक्ति दी है, उसको हम भूलकर मद में इतने चूर हो जाते हैं कि भगवान में जब पुकारते हैं, भगवान कहते हैं आओ, शंखनाद बजता है सुबह सुबह मंगल आरती का, फिर भी हम लोग नहीं सोएंगे, हाँ है कि नहीं। भगवान के भक्त आकर बोलते हैं चलो रथ यात्रा है आ जाइए, फिर नहीं नहीं अभी समय नहीं है, मद है, भौतिक संसार का मद, लिप्त है हम उसमें। तो इसी प्रकार से सुग्रीव लिप्त था। फिर जब उसको सही बात पता चली हनुमान से, तभी उन्होंने कहा अभी क्या किया जाए, तो तारा को भेजा गया ताकि उसके सामने कम से कम लक्ष्मण शांत हो जाएगा। और फिर तारा, हनुमान सबने मिलाकर उनको शांत किया, और उसी क्षण सुग्रीव जी राम के पास आए, दंडवत प्रणाम किया। लेकिन राम ने क्या किया, ऐसे ने हाँ ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। भगवान रामचंद्र, भगवान इतने दयालु है कि जिसने गलती भी की है लेकिन वो अभी सुधर रहा है, तो उसने कहा नहीं 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 ऐसा मत करो, आप मेरे मित्र है, गले लग जाओ। ये कहानी हमने इसलिए बताई कि भक्तों के जीवन में भी ऐसी बातें आती है। सुग्रीव भक्त है, भक्तों को भी भक्ति जैसे शुरू होती है तो दो चीजें होती है उनके जीवन में। जैसे आप भक्ति शुरू करोगे आपका जीवन एकदम शुभ हो जाएगा, ऐसा लगेगा वाह क्या जीवन है। और दूसरी बात होगी क्लेशाग्नि, क्लेशाग्नि अनशुभदा। भक्ति की जैसे हम शुरुआत करेंगे तो दोनों चीजें साथ साथ में होती है, जो सारे सांसारिक क्लेश है उससे हमारी मुक्ति हो जाती है। तुरंत ऐसे लगता है संसार तो बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं, हरा भरा संसार है, और फिर हम उसी में रहना चाहते हैं। और फिर भगवान ने दी हुई ये जो बात है पीस ऑफ माइंड, थोड़ी ऐश्वर्य भी आ जाता है, क्योंकि नारायण जहां पर है वहां लक्ष्मी अपने आप आती है। आपने देखा होगा एक छोटे से कोने के गांव में कोई इस्कॉन का सेंटर खुलता है, जैसे इस्कॉन का सेंटर खुलता है वहां पर कारें आने लगती है, बड़े बड़े हजारों चीज आ जाती है। कहां से आ गई? क्योंकि भगवान कृष्ण आ गए, अभी लक्ष्मी अपने आप आएगी। तो भक्तों के जीवन में भी लक्ष्मी आती है, लेकिन जब भक्त सोचता है, अरे देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, कैसे मैंने बिजनेस चलाया है, कि आज मेरे पास कितना पैसा है, कितनी ताकत है, कितना ऐश्वर्य है, ऐसे अगर कोई सोचता है तो थोड़ा सा उसमें चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान उस वापस ले लेते हैं, तुरंत ले लेते हैं, क्योंकि वो सोचते ये तो उसके जीवन में बाधा है। उसी प्रकार से सुग्रीव को लक्ष्मण द्वारा भगवान दिखा रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से रहोगे तो वाली का मार्ग अभी भी खुला है, जिस प्रकार से वाली गया उस प्रकार से आप भी जाओगे। लक्ष्मण असल में उनको कहता भी है कि आप ये मत सोचो कि राम ने वाली को मारा, अभी आपको कुछ नहीं कर सकते, जिस बाण से वाली मर गया उसी बाण से आप भी चले जाओगे। अर्थात सुग्रीव ने जब सही बात कही कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं सोच रहा, मैं थोड़ा सा गड़बड़ में हो गया, थोड़ा सा लिप्त हो गया, क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले ही सारे वानरों को 15 दिन के अंदर बुलाया हुआ है, आज ही सब लोग आते होंगे। तब लक्ष्मण कह रहे हैं मुझे भी क्षमा कर दीजिए कि मैंने इतने कटु वचन आपसे कहे। तो भक्ति में भी इस प्रकार के ऐश्वर्य आएंगे, लेकिन प्रभुपाद हमें आज्ञा दे रहे हैं यहां पर कि आपका जो भी ऐश्वर्य है, किसी के पास, हर व्यक्ति के पास किसी ना किसी प्रकार का ऐश्वर्य होता है। कोई बहुत बुद्धिमान होता है, किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास सौंदर्य होता है, किसी के पास वैराग्य होता है, जैसे ब्रह्मचारी लोग, इनके पास वैराग्य इनका ऐश्वर्य है, हम आकर्षित हो जाते हैं। ऐश्वर्य मतलब वो चीज जिससे हम आकर्षित हो जाते हैं। तो ना ही हमारा संपत्ति, ना हमारा शरीर, ना हमारी बुद्धि, ना हमारा ज्ञान, ना हमारा वैराग्य, किसी से भी हमें यह नहीं लगना चाहिए कि अभी मुझे अपने लिए कुछ करना है, सेल्फ इंटरेस्ट। जैसे हम अपने लिए कुछ चाहते हैं हम भगवान से दूर हो गए। ये रावण की प्रथा है। रावण कौन है? असल में रावण ये इसी वृत्ति का द्योतक है। संसार में भगवान के बारे में अलग 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 प्रकार के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, है ना? हम उत्सव मनाते हैं, जन्माष्टमी उत्सव, गौर पूर्णिमा उत्सव, रामनवमी उत्सव, लेकिन ऐसा कोई उत्सव नहीं है जिसमें किसी राक्षस के कारण उत्सव मनाया जाता है। वो रावण के कारण मनाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं रावण कितना महान राक्षस होगा कि रावण के मारने से संसार इतना तृप्त हो गया, इतना संतुष्ट हो गया कि वो उत्सव आज भी हम करते हैं विजयादशमी के रूप में, दशहरा के रूप में। ऐसा एक ही फेस्टिवल है। कृष्ण ने कितने हजारों राक्षसों को मारा है और सारे अवतारों ने अनेकों राक्षसों को, लेकिन एक राक्षस का वध हम लोग आज उत्सव मनाते हैं विजयादशमी। मतलब हम समझ सके रावण की ताकत क्या होगी। कौन है रावण? रावण ये भौतिक संस्कृत का प्रतीक है। रावण ये भगवान से अलग होकर अपने आप के लिए सब कुछ चाहना, अपने आप के लिए सब भोग चाहना, इसका प्रतीक है। और वो रावण हमारे सबके हृदय में छुपा हुआ है। इसीलिए जब भगवान ऐश्वर्य देते हैं, रावण की तपस्या करने की ताकत, रावण को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी की ताकत, ये सब कुछ भगवान से आया है। लेकिन आखिर में वो चैलेंज किसको कर रहा है? राम को चलो नहीं, सीता आपको नहीं मिले, सीता मेरे पास होनी चाहिए। ये रावण वृत्ति जो है हमारे हृदय में, भक्तों के हृदय में भी हमेशा रहती है। ऐसे कहते हैं सत्ययुग में राक्षस और सुर और असुर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ग्रहों पर रहते थे। त्रेता युग में उसी ग्रह में लेकिन अलग अलग देशों में रहते थे, जैसे लंका भारत। द्वापर युग में एक ही परिवार में रहते थे, जैसे पांडव और कौरव, दुर्योधन और युधिष्ठिर एक ही परिवार में। कलयुग में एक ही व्यक्ति में राक्षस है, एक ही व्यक्ति में सुर और असुर दोनों है। तो हमारे लिए ये बात प्रभुपाद ने जो आज कही है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसके लिए हमें लक्ष्मण मदद करेंगे, गुरु मदद करेंगे, वैष्णव मदद करेंगे, और इसको हटाने के लिए ये रावण जो हमारे मन में बैठा है, भगवान से अलग होकर भोगने की इच्छा, इसका मृत्यु होना जरूरी है। इसलिए बहुत सिंसियरिटी से अगर हम भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बुलाते हैं नाम के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम ये इस रावण को खत्म कर देगा, ये रावण वृत्ति को खत्म करेगा, और तब श्री राम हमारे हृदय में। यही हमारी रामनवमी है। राम जब हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, राम जब प्रकट होते हैं तो सारा संसार हरा भरा हो जाता है, सुंदर हो जाता है, सब जगह सही चीजें होने लगती है। वैसे ही जैसे हम भगवान के नाम को अपने हृदय में लेंगे तो हृदय में सब कुछ सही होने लगेगा। जो हमारे अनेकों विचार है इंद्रित लालसा के लिए, इंद्रित तृप्ति के लिए, वो सब छूटकर, और वो आएंगे तो भी जैसे सुग्रीव को भगवान ने बचा लिया, वैसे राम राम नाम हरि नाम आपको इन सब चीजों से बचा लेगा। वो आपको चेतावनी देते रहेंगे गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से, और इस प्रकार से हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हमने सोचा कि हम अपनी क्या बोलते हैं उसको, किस्मत खुद बनाते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना आजकल, यू आर द मेकर्स ऑफ योर डेस्टिनी, अपनी किस्मत अपना नसीब खुद बनाओ, ऐसे कभी नहीं होता। ये केवल एक भयंकर माया जाल है। एक दृष्टि से है भी कि आपकी किस्मत आप बना सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको स्वतंत्रता दी है। अगर आप चाहते हो स्वतंत्रता से मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान का सेवक बनूंगा, वही स्वतंत्रता का उपयोग करके आप सोचे नहीं मैं माया की सेवा करूंगा, मैं माया में रहूंगा, वो आपकी इच्छा है। यस, टू सम डिग्री इट इज ट्रू कि आप अपनी किस्मत अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हो, लेकिन उसी हद तक, उससे आगे नहीं। उसके आगे या तो माया पूरे कंट्रोल में जाएगी या भगवान श्री कृष्ण पूरे कंट्रोल में आएंगे। इसलिए भक्त अपने जीवन में हरिनाम और वैष्णव सेवा, ये जो युग धर्म है, इसका पालन बहुत सावधानी से करते हैं। तो कभी कभी हम देखते हैं हरिनाम तो बहुत अच्छा कर लेते लोग, लेकिन वैष्णव सेवा के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, असल में वैष्णव अपराध हो जाता है। लेकिन युग धर्म हरिनाम और वैष्णव सेवा दोनों है। अगर वैष्णवों का हम अपराध करते रहेंगे तो हरिनाम आपसे चला जाएगा। जैसे सुग्रीव बार बार लक्ष्मण को दुर्लक्षित कर रहा था तो भगवान ने उसको फिर से पिटवाकर लक्ष्मण का अनुराग, क्या बोलते हैं उसको, आशीर्वाद दिया पिटवाकर। हाँ, तो हमें पिटना क्यों है? पहले से ले लो, हमारे गुरुजन है, हमारे वैष्णव है, उनकी सेवा करो। अगर उनकी सेवा है तो भगवान प्रसन्नता से मेरे हृदय में प्रवेश करेंगे। अगर उनकी सेवा नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ी चेतावनी देके रखी है कि कोई भक्त अगर हरिनाम ले रहा है, कोई व्यक्ति हरिनाम ले रहा है लेकिन वैष्णव का बार 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 अपमान करता है, अपराध करता है, उनके पीछे लगा हुआ है कि इनको मैं कैसे नीचा दिखाऊं, तो भगवान कहते कि मैं वो हरिनाम तो मैं ही हूं ना, मैं अंदर जाके और उसके हृदय की भक्ति नष्ट कर दूंगा। देखो कितने भयंकर चेतावनी है। अर्थात भक्त लोग इस हद तक जाते नहीं, उनके अपराध छोटे मोटे होते हैं। हाँ, कभी प्रसाद के ऊपर झगड़ा, तो कभी अपने बेड बिस्तर के ऊपर झगड़ा, तो कभी कौन कीर्तन करेगा इसके ऊपर। हमारे झगड़े बड़े नहीं होते, हम लोग छोटे झगड़े वाले लोग हैं। हमारे ज्यादा करके प्यार है, कभी कभी प्यार में थोड़ा सा हाँ आ जाता है, लेकिन उसको भी टालना चाहिए, क्योंकि असल में हमारा एक ही आश्रय है वैष्णव। अगर वैष्णव प्रसन्न है तो हरि प्रसन्न है, हरि प्रसन्न है और वैष्णव प्रसन्न नहीं, ऐसे हो नहीं सकता। तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं कि भक्त के प्रति अपराध करेंगे इसका कोई उपाय नहीं है। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमा स्थाने अपराधे नाही परित्राण। डेंजरस। इसलिए दोनों साथ में, भगवान ने हमें यह मौका दिया है, शरीर दिया है सेवा के लिए, हरि सेवा और भगवान के हरि के दास हरिदास की सेवा, दोनों की सेवा होने चाहिए। और ऐसे अगर करेंगे तो हम वाली या रावण के अंत की तरफ में पहुंचेंगे, लेकिन सुग्रीव को जैसे बचाया गया राम के द्वारा, वैसे हमारी स्थिति होगी। तो यहां ब्रह्मा जी दुर्वास को यही उपदेश दे रहे हैं कि देखो आपको ताकत मिली है भगवान से, आपने उसका दुरुपयोग किया है। आप चाहते मैं आपका संरक्षण करूं, लेकिन मैं इसमें पढ़ने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि जो भगवान चाहते वही हो, तो इसलिए आपको मेरे पास शरण नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कॉमेंट्स है? यस प्रभु। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम बताया उन्होंने कि रावण हमारे हृदय में से कभी ऐसा बाहर दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ये रावण जो है उसको खत्म करने की ताकत हमारे में है ही नहीं। उसको खत्म करने की ताकत एक ही व्यक्ति की है, वो है श्री राम। भले सुग्रीव भी बात करता था, अंगद भी बात करता था, हनुमान भी, सब लोग बोलते थे हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम पूरी लंका को उखाड़ कर समुद्र में फेंक देंगे रावण सहित, लेकिन किसने किया नहीं। करने वाले एक ही है श्री राम। तो शुद्ध भक्त वो व्यक्ति है। हम लोग कैसे अभी नवसुखिया भक्त है। अगर हम में से कोई अगर जिसे सोच रहा है कि मैं एडवांस्ड हूं तो सॉरी, लेकिन एडवांसमेंट एक अलग चीज होती है। शुद्ध भक्त वो है जो हर समय, उसके सामने हमारे सबके सामने दो निर्णय आते हैं, रावण को अंदर लूं कि बाहर छोड़ू। माया के पास जाऊं कि नहीं जाऊं। एक भगवान है, दूसरी माया है। शुद्ध भक्त के सामने भी ये दोनों पर्याय हर क्षण रहते हैं, लेकिन भक्त वो है जो हर क्षण अनायास ही अपने आप ही वही स्वीकार करता है जो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल है। हमारा मन तो हमारे काबू में है नहीं, वो तो बार बार बताएगा यहां करो, ये करो, वो करो, ऐसे जाओ, इसमें क्या होता है, सब लोग संसार कर रहे हैं, आप भी करो, बताते हैं ना ऐसे, थोड़ा भक्ति करो, क्या प्रॉब्लम है। खास करके जवान लड़के जब आते हैं भक्ति में तो मां बाप खुश होते पड़े, अरे चलो अच्छे रास्ते पर लग गया, फिर रास्ते से सर मुंडवा जाता तो ये तो डेंजरस है। हाँ, आप दारू नहीं पीना, सब अच्छा चल रहा है, दारू नहीं पीने का, मांस नहीं खाने का, इतना बस हो गया, उससे आगे जाने का नहीं, बताते ना ऐसे। लेकिन भक्ति वहां नहीं रुकती है, पूर्ण आश्रय। तो हर क्षण जो व्यक्ति राम का आश्रय लेता है वो भक्त है। कभी कभी रावण का आश्रय लेता है और कभी कभी राम का आश्रय, तो वो बीच वाला भक्त है। जो हमेशा रावण में ही लिप्त रहता है वो अभक्त है। इसलिए कैसे हम बार 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 रावण राम का आश्रय ले, उसके लिए सारा प्रयोजन है। ये भक्ति का जो मार्ग है वो उसी के लिए बनाया है, कि हर क्षण हमें राम की याद आनी चाहिए, हर क्षण ऐसे हमारे पास अस्त्र शस्त्र होने चाहिए जिससे हम रावण से बच सकते हैं। ये कौन है अस्त्र शस्त्र? संगोपांगास्त्र पार्षदम, चैतन्य महाप्रभु के जो गौर भक्त वृंद है, ये हमारे अस्त्र है, ये हमें बचाएंगे। इसलिए भक्तों ने कभी आपको पूछा कि भाई आजकल मंगल आरती में दिखते नहीं, तो क्रोधित मत होना, वो आपके चहेते हैं, वो आपके वेलविशर है, वो आपको जानना चाहते आप क्या कर रहे हो। खुश हो जाओ, धन्यवाद कहो, धन्यवाद आपने पूछा, भले आप जेन्युइन कारण के लिए नहीं आते हो, लेकिन किसने पूछा तो क्रोध मत करो, बोलो थैंक यू। ठीक है, अरे यस ब्रो, इनका प्रश्न है कि रावण लंका का प्रतीक, रावण है लंका का सेंटर, रावण है, लेकिन वहां पर भी विभीषण थे, उनको कुछ प्रयोजन से है। भक्त कहीं पर भी रह सकता है, वो नरक में भी रहेगा तो भक्त रहेगा। भक्त को किसी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रभुपाद को बहुत लोगों ने कहा कि आप साधु का नियम होता है कि समुद्र को पार नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्तिदान सरस्वती प्रभुपाद ये लोगों ने क्या कहा, हम क्यों जा रहे हैं वहां पर, हम जहां पर बैठे हम लोग वृंदावन साथ में लेके जा रहे हैं। तो विभीषण लंका में भी था, लेकिन लंका में उसका एक छोटा वैकुंठ था, उसको लंका स्पर्श नहीं कर सकती। वैसे अपना अपना एक घर जो है, आपका कोई बिल्डिंग में फ्लैट है, सारे बिल्डिंग में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, आपका उस संसार में, उस छोटे से क्रिएशन में आप एक वैकुंठ में रह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका केंद्र बिंदु भगवान है। देखो भक्ति की क्या शक्ति है, कि आप इस संसार में जो माया जाल से इतना प्रभावित है उसमें आप वैकुंठ में रह सकते हो। यह भक्ति का चमत्कार है कि सारा संसार, भक्त लोग कितने सारी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कभी कभी लोग कहानी सुनते हैं तो भक्तों की कहानी सुनकर कहते आश्चर्य है, इसने अभी तक आत्महत्या नहीं की। लेकिन हम देखते हैं इस प्रकार की स्थिति में भी वो सवेरे आके नाच रहा है, हाँ भगवान के सामने नाचता है, गाता है। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति में भी वो वैकुंठ में रहता है, पूर्ण आश्रय ग्रहण कर चुका है। ये भक्ति की किमया है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें भक्ति मिली है। इसके लिए जितने धन्यवाद हम भक्तों को देंगे, हमारे गुरुजनों को देंगे, उतने कम है। हम इसका जो ऋण है ये जन्म जन्मांतर चुका नहीं सकते। इसलिए जन्मे जन्मे प्रभु से, पहले मुझे आश्चर्य था ऐसे कैसे जन्मे जन्मे क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत कठिन दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली जन्मे जन्मे ही का ही सबब है ये। आप कितने करोड़ों जन्मों तक यहां वहां घूमे हो, इस जन्म में किसी गुरु ने, किसी वैष्णव ने आपको बोला चलो भाई ये माला लो, जप करो, भक्ति का आश्रय लो। कितना महान कार्य किया उन्होंने कि हम इस संसार में रहते हुए वैकुंठ में रह सकते हैं, जैसे विभीषण लंका में रहता था। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।